USAID, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति
हिंसा को नो
समझ प्रेम सम्मानिता आपस में अनुबंध रहे।
महिलाएं अपने आप को असहाय न समझें। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो
महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम
हिंसा को नो
अर्पा रेडियो सुनैया जम्म संगवारी मनला संज्ञा
औ मातृका के जय जोहार राम राम
अब आप मन के स्वागत है हमारे लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम के नवा एपिसोड में जेखर नाम है
हिंसा को नो।
ये तो हमन आप मन ला समय समय में बतात रही थे कि हमारे एक कार्यक्रम के मकसद खाली हिंसा के बारे में जानकारी देना नहीं है। एकर संगे संग हमन ये उम्मीद घलोक करथन कि आप मन हमार संग सच्ची मा हिंसा ला नो बोले मा मदद करिया।
बिल्कुल सही कहे है मातृका संगवारी हो हम सब जन जानथन कि हमर आसपास हिंसा होते लेकिन हमर मन मा एक ठन उलझन हमेशा रहते कि हमन कैसे पीड़ित के मदद कर सकथन। बस आप मन के यही उलझन ला मिटाए बर हमन हाजिर हो गए हन
और प्रोग्राम ला आगु बढ़ाए के पहली आज हमन आप मन ला एक ठन नाटक सुनाना चाहथन। तो बांध लेवा अपन कुर्सी के पेटी और बढ़ा लेवा अपन रेडियो के आवाज। तो चला करथन हमर नाटक के आगाज।
चलिए आइए सुनाती हूँ मैं आपको एक ऐसी कहानी जहाँ पर कानूनी अधिकारों को जानने में ही है समझदारी। दोपहर का समय था। एक लड़की गुमसुम सा चेहरा लिए अपने घर के बरामदे में बैठी थी। तभी अचानक से सुनाई दी उसको एक आवाज।
सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो भाई?
नमस्ते काकी, माँ तो अभी छत पर गई है, आप बैठिए माँ आती होंगी।
अरे राधा बेटिया, तुम ससुराल से कब आई? चलो अच्छा है, अब आई हो तो लंबा रुक के जाना।
हाँ काकी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
इतने में सुनीता छत से नीचे उतर आती है।
तभी हाजिर होती है राधा लेकर चाय। और राधा बिटिया, ससुराल में सब कैसा है? तुम्हारे तो चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। दामाद जी खाना नहीं देते क्या?
काकी वो दरअसल
ससुराल में सब अच्छा चल रहा है। इसके बहुत दिनों से घर आई नहीं थी, हमें बोली हमारी याद आ रही है तो हम बोले कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, बस अब कुछ दिनों में चली जाएगी।
सुनीता की ये सब बातें सुनते ही राधा के उड़ गए होश।
राधा थी हैरान। तभी शांति की ओर से आया ये घर आते हुए दूसरा सवाल।
राधा, तुम्हारे गले पे ये निशान कैसा है? ये तो बहुत गहरा जख्म लग रहा है।
ओ राधा, कल छत से उतर रही थी, बस पैर फिसल गया और गिर गई। बस उसी का निशान है, कोई गहरा घाव नहीं है।
ओह, सुनीता की ये बात सुनकर शांति को हुआ थोड़ा शक। शांति क्योंकि थी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसको हुआ शक कि कहीं ये मामला घरेलू हिंसा का तो नहीं। राधा, मैं तुमसे कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ?
अरे अकेले में क्या बात करनी है, यही बात करिए।
सुनीता, राधा के शरीर में जो निशान है वो घरेलू हिंसा की वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे इसे बात करनी बहुत जरूरी है।
ये बोल शांति राधा को लेकर जाती है दूसरे कमरे में।
चलिए हम भी चलते हैं, जानते हैं होता है क्या दूसरे कमरे में। राधा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
शांति की ये बातें सुनते ही राधा रोती है बड़ी जोर जोर से फूट फूट कर।
मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद मेरी सास और बाकी ससुराल वाले मुझे दहेज न लाने के लिए ताने देने लगे। पहले मैंने सोचा कि कुछ दिन में ये सब बंद हो जाएगा, पर दिन भर दिन तो ये बढ़ने लगा। घर में आए मेहमानों के सामने भी वे मुझे दहेज के लिए ताने मारने लगे। एक समय तो ऐसा आया जब 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 ये लोग मुझ पर शारीरिक हिंसा करने लगे। धीरे धीरे उनके जुल्म बढ़ने लगे। कभी तो वो मुझे जलाने की कोशिश करते तो कभी मेरा हाथ गर्म पानी में डाल देते और मुझे घंटों घंटों तक कमरे में बंद करके रखा। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है जब तक मेरे घर वाले मुझे दहेज नहीं देंगे तब तक वो मुझे घर भी नहीं आने देंगे।
राधा खुद को संभालो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे और वहां तुम्हारा केस दर्ज करवाएंगे।
लेकिन ये तो हमारे घर का मामला है, भला कोर्ट हमारा मामला क्यों सुनेगा?
तुम्हें गलतफहमी है। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए हमारे संविधान में काफी सारे प्रावधान हैं, जो हिंसा और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, आईपीसी के तहत सेक्शन 498A, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ये सब। अपने सारे दस्तावेज तैयार रखना, हम कल ही सखी वन स्टॉप सेंटर जाएंगे।
बात तो बहुत कान की बताई है शांति ने, तो करिए अपनी गलतफहमी दूर और जानिए घरेलू हिंसा और उससे जुड़े सभी नियम कानूनों को।
संगवारी हो, राधा के जैसे ही हमर कई जन बहिनी मन ला ए कानून के जानकारी नहीं है
और एकरे पर आज हमन अपन ए प्रोग्राम के माध्यम ले आप मन संग महिला मन के कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी साझा करबो, ताकि राधा जैसे हमर सब बहिनी मन ला अपन अधिकार के जानकारी हो और वो खुद ले बोले हिंसा को नो।
ये तो आप मन बहुत सही कहा। हमर खास कार्यक्रम के उद्देश्य घलोक यही है, ताकि हमन अपन श्रोता संगवारी मन तक वो जम्मो जानकारी पहुंचा सकन जेन हा ओ मन ला हिंसा ले निकले में मदद कर सके और ओ मन हा हिम्मत और जोश के साथ हिंसा ला खत्म करे मा हमर सहयोग देवे।
हमन एक कार्यक्रम के तहत हमन आप मन ला लिंग आधारित हिंसा के बारे में और ओखर प्रकार के बारे में बताए हन, हिंसा के चक्र और ओ चक्र ले निकले के तरीका के बारे में गोठियाए हन और आज हमन ओखर ले जुड़े कानून के बारे में बात करथन।
घरेलू हिंसा के समस्या खाली भारत में नहीं है, बल्कि हर देश में देखे ला मिलते और ए बात तो हमन शुरू ले बताथन कि घरेलू हिंसा के शुरुआत महिला के जन्म ले पहली ले ही लड़का और लड़की के बीच भेद के रूप में हो जाते।
मातृका एक ठन और ध्यान देने वाले बात है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आए वाला हिंसा खाली ओ हिंसा जिन्हा पति करते बल्कि एमा घर के कोनो भी सदस्य द्वारा करे गए हिंसा शामिल होते। जैसे घर के सदस्य मन के ताना देवाई, घर ले निकाले के धमकी देना या ओला ओकर अपन घर ले निकाल देना, खाना में कम पोषण देना आदि आदि। और कई घर महिला मन सोचते कि अगर सास ससुर नना जेठ जेठानी देवर मामा नानी नाना कोनो और करीबी रिश्तेदार महिला ऊपर हिंसा करते ता ओहा घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आए। लेकिन श्रोता संगवारी हो, याद रखा कि आपके कोनो भी रिश्तेदार द्वारा करे गए हिंसा घरेलू हिंसा के ही रूप है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 3 माले एक जन महिला हा शारीरिक या यौन हिंसा के शिकार होते।
भारत में हिंसा के एक और बड़े कारण माने गए हैं दहेज। हमारे देश में दहेज के प्रथा बरसों पुराने हैं। महिला मन के पैदा होए के पहली ले उखर दाई दादा मन उखर दहेज के चिंता करे लागते। भारत में महिला मन के शिक्षा ले अधिक महत्ता उखर शादी और दहेज ला दिए जाते। भले ही साल 1961 में सरकार हा दहेज प्रथा ला गैर कानूनी साबित करके ओके ऊपर रोक लगा दिए है, लेकिन आज भी भारत के लगभग हर कोना में दहेज के मांग गैर कानूनी तरीका ले करे जाते।
घरेलू हिंसा और दहेज के गहरा रिश्ता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट नाम के एक ठन संस्था हा 2005 में दहेज के राशि और ओखर से होए वाले हिंसा के बीच के संबंध ला समझे बर एक ठन अध्ययन करिस। ए अध्ययन में
उम्मीद ले कम दहेज भुगतान हा महिला मन के ऊपर खतरा ला दर्शाते। एक खतरा मन मा शारीरिक और भावनात्मक शोषण जैसे मारना और लगातार सेहत मा गिरावट शामिल रही, बल्कि कुछ मामला में तो दहेज के कारण ले मृत्यु और दुल्हन ला जलाना घलोक शामिल है।
ओहो मातृका, ते कार्यक्रम के शुरुआत में 498 ए धारा का जिक्र करे रहे ना, आखिर ए 498 का है?
देखा, भारत है एक ठन संविधानिक देश, यहाँ सबो नागरिक मन के भलाई बर उनकर पास कानूनी अधिकार है, जेकर इस्तेमाल करके ओ मन हा अपन ऊपर होवत अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकत है। ऐसने ही हमार संविधान में दाई और बहनी मन बर घलो कुछ कानूनी अधिकार संरक्षित करे गए है, जिन अधिकार मन ले महिला मन अभी तक वंचित है।
अरे मातृका, चिंता का बात के है, जिन अधिकार आज तक हमार बहनी मन ला नहीं मिले रही, ओकरे जानकारी तो हमन देवत हन, ताकि ओ मन जागरूक हो पाए और सही समय आए मा अपन अधिकार के इस्तेमाल कर सके। अपन कानूनी अधिकार के बारे मा आउ जाने बर हमन चलथन सीमा गोस्वामी मैडम करा।
अच्छा, हमर जिला के संरक्षण अधिकारी।
नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं जिला महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री सीमा गोस्वामी जी से। हम इनसे जानेंगे कि एक महिला जब किसी तरह से घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो किस किस तरह की वो महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं, किस तरीके से वो कानूनी सहायता ले सकती हैं। गोस्वामी मैम, आपका स्वागत है अर्पा रेडियो के इस कार्यक्रम में।
हेलो सबको, मेरा नमस्कार।
या मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो लगभग अभी वर्तमान समय में सखी वन स्टॉप सेंटर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उनके माध्यम से आपके पास प्रकरण आ रहे होंगे या महिलाएं आती होंगी, तो लगभग एक महीने में आपके पास कितने प्रकरण आ रहे हैं?
क्योंकि बिलासपुर दूसरे नंबर पे है घरेलू हिंसा में।
अच्छा,
पहले नंबर पे दुर्ग है, दूसरे नंबर पे बिलासपुर है। बिलासपुर में वैसे महीने में तो 10-15 केसेस हमारे यहाँ आते ही हैं, 20 भी हो जाते हैं लेकिन इससे कम नहीं होते हैं।
अच्छा मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिला के किस तरीके के कानूनी अधिकार होते हैं और घरेलू हिंसा होने के क्या कारण होते हैं, किस तरह के प्रकरण आपके पास आ रहे हैं?
अधिकांशतः घरेलू हिंसा के प्रकरण ये शराब पीने के कारण आ रही है, अशिक्षा भी है और पुरुषों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
पति पत्नी के विवाद का जो कारण
है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि पुरुषों के द्वारा दूसरी शादी कर लिया जाता है, उससे महिलाएं प्रताड़ित होती है, अभी बच्ची को
ध्यान नहीं दिया जाता पत्नी पे,
दूसरी शादी करके ले आते हैं और पहली महिला को घर से निकाल दिया जाता है।
मतलब आमतौर पर अभी आप ये समस्या बिलासपुर में आपको लग रहा है कि इस तरह के ज्यादा अधिक प्रकरण आ रहे हैं,
शराब है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
मैम आपसे ये जानना चाहेंगी कि अगर किसी महिला के ऊपर किसी तरह की हिंसा होती है तो वो किस तरह से कानूनी सहायता ले सकती है या उसे किस किस तरह की मदद शासन की तरफ से या जो शासन की योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बने हैं उनसे किस तरह की सहायता मिल सकती है?
देखिए, अगर महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होता है तो सबसे पहले वो पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकती है या फिर हमको संरक्षण अधिकारी को भी रिपोर्ट कर सकती है, चाहे तो वो न्यायालय में भी परिवाद कर सकती है या फिर अभी इतनी सारी हेल्पलाइन बनी है, देखिए सखी में भी 5 दिन की उनको शेल्टर की व्यवस्था है, वो वहाँ भी रह के सोच समझ के आगे अपना जो भी उनको सहायता चाहिए वो हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं।
मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि एक पीड़ित महिला के पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं?
जी हाँ, वो भरण पोषण भी ले सकती हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत वो DIR भी करवा सकती हैं, घरेलू हिंसा भी करवा सकती हैं,
सुरक्षा का भी अधिकार हो।
हाँ, सुरक्षा का भी हाँ जी।
मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने DIR की बात की तो DIR क्या है, FIR और DIR में क्या डिफरेंस है या महिलाओं को इसको किस तरीके से समझने की जरूरत है?
जैसे पुलिस जैसे थाने में जाते हैं तो FIR दर्ज कराया जाता है जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, उसी प्रकार DIR भी है, इसे भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ऐसे है जो कभी भी विवाह के दरमियान कभी भी हो सकता है, इसके लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि विवाह के 1 महीने बाद होगी कि 2 महीने बाद होगी, ये कभी भी हो सकती है, विवाह के 10 साल बाद भी हो सकती है और 20 साल बाद भी हो सकती है, इसमें पीड़िता को ये अधिकार रहता है कि वो कभी भी अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा सके, चाहे वो न्यायालय में करा सके या संरक्षण अधिकारी के पास वो दर्ज करा सकती है।
मैडम, जैसे प्रकरण की आपने बात करी कि शराब की वजह से बहुत सारे प्रकरण आते हैं, और भी जैसे घरेलू हिंसा के बहुत से अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जो प्रकरण आ रहे हैं उसमें जैसे कि आर्थिक हिंसा, क्या इस तरह के प्रकरण भी आते हैं, या मानसिक प्रताड़ना, जिसमें सिर्फ मानसिक प्रताड़ना हो, शारीरिक तो नहीं लेकिन सिर्फ मानसिक हिंसा हो, इस तरह के प्रकरण?
मानसिक प्रताड़ना है, घर में पति अगर आर्थिक सहयोग नहीं करेगा तो महिलाएं तो प्रताड़ित होंगी, क्योंकि बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ये सब वो कहाँ से पूर्ति करेंगी। एक समय बाद उनको ये कह दिया जाता है कि जाइए, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी पूर्ति करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है कि भाई अगर मान लीजिए माँ बाप ही पूरे खर्च उठाएंगे तो उनको फिर अपनी बेटियों का विवाह करने से, हाँ फिर बेटियों का विवाह करने से कोई मतलब नहीं है। माँ बाप तो सक्षम है अपने बेटियों का खर्च उठाने के, ऐसा तो नहीं है। फिर आखिर जब ब्याह कर उनको इतना सब चीज जो करके विदा किया जाता है देकर, उसके बावजूद भी पति लोग को ये लालसा रहती है कि भाई माता पिता ही खर्च उठाएं, ऐसा क्यों?
मैम आपसे ये जानना चाहेंगी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है इसके अंतर्गत हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं, जब जैसा कि DIR के माध्यम से आप प्रकरण कोर्ट में रखते हैं, तो कोर्ट की तरफ से इमीडिएट क्या क्या राहत मिल सकती है?
इमीडिएट उनको प्रोटेक्शन की सुविधा मिल सकती है, अंतरिम भरण पोषण मिल सकता है उनको, अगर जैसे भी उनकी सहायता है ये कोर्ट के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाएगी।
मैम ये जानना चाहेंगे कि संरक्षण अधिकारी या वन स्टॉप सेंटर कैसे किसी महिला की मदद कर सकता है?
देखिए सखी वन स्टॉप सेंटर में जैसे कोई हमारे पास महिला आती है, अगर मान लीजिए उनको शेल्टर की जरूरत है या उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हमको सखी सेंटर में वो करते हैं। फिर उसके बाद उनके परिवार वालों को बुला के काउंसलिंग किया जाता है। अगर काउंसलिंग में उन लोगों का मामला अगर मान लीजिए समझौता हो जाता है तब तो महिला को भेज दिया जाता है, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर DIR के लिए हमारे पास आता है, फिर हम उनको कोर्ट में पुट अप करते हैं।
मतलब सखी वन स्टॉप सेंटर से उनको इमीडिएट जो सहायता है उसमें काउंसलिंग है, इसके अलावा यदि मेडिकल की जरूरत,
FIR की जरूरत,
FIR। प्रश्न और भी है मैम, इस पर थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहेंगी कि प्रताड़ना की बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए, हमारे जो श्रोता है उनको, कि किस किस प्रकार की हिंसा होती है महिलाओं के साथ?
देखिए 5 प्रकार की हिंसा होती है। पहली तो है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में है मारपीट करना है या फिर उसको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना जिससे वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। दूसरी है यौन हिंसा। यौन हिंसा पति या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करना है जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट लगे। आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा ऐसा है जब खर्च के लिए अगर पति पैसे नहीं देगा और हर चीज के हिसाब मांगेगा और उनके माता पिता से पैसे की मांग करेगा,
उनको कुछ करने भी ना दे,
हाँ उनको कुछ करने भी ना दे, तो ये इस प्रकार की आर्थिक हिंसा के अंतर्गत है। मानसिक हिंसा वो है जिसमें उसको डरा कर रखना, हर बात पर रोकना टोकना या कई दिनों तक बेवजह बात न करना, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, महिला को हीन समझना, ताने देना, बेइज्जती करना आदि, ये सब मानसिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। भावनात्मक हिंसा कहना चाहिए पति या अन्य किसी सदस्य के द्वारा महिला की आलोचना करना या उसे शर्मिंदा करना, दोष देना या घर परिवार से अलग करके महिला के ऊपर नियंत्रण करना, किसी से मिलने नहीं देना और अपने परिवार वालों से मिलने पर पाबंदी लगाना, ये है भावनात्मक हिंसा। कई बार महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि हमको अपने माता पिता से बात करने से मना किया जाता है, मोबाइल फोन हमारा तोड़ दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर मान लीजिए इमिडिएटली हमको किसी पति मार रहा है तो हमको पड़ोस में जाके मोबाइल मांग के फिर अपने माता पिता को बुला के फिर हमको अपने घर आना पड़ता है, ऐसे कई बार सिचुएशंस आए हैं।
जी आपने बहुत अच्छे से मैम घरेलू हिंसा के प्रकार की जानकारी दी है। मैम एक बात आपसे जानना चाहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हर महिला को पता होने चाहिए?
सबसे पहले तो सुरक्षा का अधिकार है, महिलाओं को सुरक्षा जरूरी है। अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर वो आगे मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर है जहाँ महिलाएं जैसे घर से हमारी लड़ाई झगड़ा होकर निकली हुई हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर में शेल्टर की व्यवस्था करते हैं जहाँ उसे चिकित्सा सुविधा है, पुलिस सहायता है, अगर वो कोई FIR करवाना चाहती है, मतलब वहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न प्रकार के प्रकरण आते हैं जिसमें वहाँ कार्रवाई भी होती है। आज हमारे पास बहुत मतलब संख्या में ऐसे उपस्थित हैं जहाँ मतलब हमको उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, जिसके अंतर्गत अभी 2023 में अवार्ड भी मिला हुआ है
जी, हम
ये महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए
बिलासपुर जिले को
सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करके हमें हासिल हो रही हैं।
जी, कानूनी अधिकार की जैसे हम बात करें तो मैम महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरह की हिंसा को जो है वो ना सहें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
जिसके बारे में किसी भी महिला को जानना चाहिए।
मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आप अपनी तरफ से इससे संबंधित जो हमारी सखियाँ हैं, दीदियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से वो घरेलू हिंसा से अपने आप को बचा सकती हैं?
यदि महिलाओं को लगता है कि घरेलू हिंसा होने का डर है तो वे 181 में भी कॉल कर सकती हैं, 1091 में भी कॉल कर सकती हैं, 112 में, 112 तो सभी जगह फेमस है और हर चौक चौराहे में ये आपको उपलब्ध है, जो कहते हैं ना एक नंबर सब ओवर, तो ये भी उपयोग कर सकती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सहायता मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो सखी वन स्टॉप सेंटर आके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकती है, अगर उनको FIR की जरूरत है तो FIR भी करवा सकती हैं, अगर उनको न्यायालय में जाना है DIR करवाना है तो वो भी हमारे पास आ सकती हैं, भरण पोषण ले सकती हैं।
मैम सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है थोड़ा बता दीजिए हमारे श्रोताओं
को। सखी वन स्टॉप सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 07752408469।
इस नंबर पर महिलाएं संपर्क कर सकती
हैं, इस नंबर पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
धन्यवाद गोस्वामी मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है घरेलू हिंसा से संबंधित हमारे श्रोताओं को दी है। हम आशा करते हैं कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं या इसके अलावा जो सामान्य महिलाएं भी हैं जो हिंसा से पीड़ित नहीं भी हैं लेकिन उन तक ये जानकारी पहुँचे और ये जानकारी जो है वो अन्य महिलाओं तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक कोई जागरूकता नहीं होगी किसी विषय पर, किसी विषय की समझ नहीं होगी किस तरीके से हमें महिलाओं को किस तरीके अधिकार मिले हुए हैं इसके बारे में हम नहीं जानेंगे या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी उपयोगिता कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाती। इसलिए ज़रूरी है कि हम सखी वन स्टॉप सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं इसको खुद जानें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि कोई पीड़ित महिला जो है इसका स्वयं लाभ ले सके, अपने आप को हिंसा से बचा सके और हिंसा को कहे नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
आज तो हमला सीमा मैडम के माध्यम ले विकट अकन जानकारी मिल गए।
हाँ मातृका, वैसे तो मैडम हाँ सब जानकारी दे दे है लेकिन मैं अपन श्रोता संगवारी मनला फिर से बताना चाहत हूँ कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला मन के संरक्षण अधिनियम 2005 का है, ताकि माई लोगिन मनला शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के एक विस्तृत श्रृंखला ला प्रतिबंधित करते, यानी कि महिला मनला एमा से कोनो भी प्रकार के हिंसा ला बहुत लंबा समय तक झेले ला मत लगाए
और यही सब बात ला ए अधिनियम के तहत व्यापक रूप से एकदम बड़े रूप में परिभाषित किए गए है। ए अधिनियम के सीमा में खाली पुरुष से विवाहित महिलाओं की सुरक्षा शामिल नहीं है, घर के जो और रिश्तेदार रहे थे ना, दादी, नानी, चाची, बाबा, कोनो जन के ओ परिवार के सदस्य मन से भी अगर कोनो हिंसा होते ना तो ओ सुरक्षा भी शामिल है।
ए अधिनियम में हिंसा के एक कानून के तहत महिला मल्ला घरेलू हिंसा, वित्तीय मुआवजा और अपन घर में रहे के अधिकार के खिलाफ सुरक्षा तलाश कर सकते और अलग अलग रहे के स्थिति में दुर्व्यवहार करे वाले ले भरण पोषण प्राप्त कर सकते।
ए कानून ए बात की गारंटी भी देते कि महिला मन को ओखर घर से नहीं निकाला जाए और अगर ओमन के संग दुर्व्यवहार होते तो ओमन खुद के समर्थन कर सकते
और ए हा महिला मन के ऊपर होए वाला दुर्व्यवहार ले उखर सुरक्षा ला सुनिश्चित करते। संगवारी हो, एकर अलावा एक ठन औ कानून है जेकर इस्तेमाल महिला मन के सुरक्षा बर करे जाते, जेला कहते दहेज निषेध अधिनियम 1961।
एहू एक ठन आपराधिक कानून है जेकर तहत दहेज ले वाले या दहेज के मांग करे वाले मन ला दोषी समझे जाते और ओमन ला दंड भी दिए जा सकते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत ही दहेज के परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
ये कानून के तहत दहेज देवैया मल्ला या आउ दहेज लेवैया मल्ला या फिर दहेज के मांग करैया मल्ला आधा साल यानी के 6 महीना तक के कैद हो सकते या उमन ऊपर 5,000 तक के जुर्माना लगाए जा सकते।
सुने हो ना संगवारी मन, जेल भी हो सकत है।
तो संगवारी हो, आशा करथन कि आप मन ला आज के एपिसोड हा पसंद आए होही। और ए बात के ध्यान रखा कि आप मन से भी कोनो प्रकार के लिंग आधारित भेदभाव झन होवे। और संगवारी हो, अगर आप मन के आसपास कोनो माई लोगिन के ऊपर कोनो भी प्रकार की हिंसा होवत है तो घबराहा झन, आप मन सहायता ले सका था सखी वन स्टॉप सेंटर के।
और बिलासपुर के सखी वन स्टॉप के पता है नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर। और सखी वन स्टॉप के नंबर है 07752408469।
और महिला हेल्पलाइन नंबर ला तो खलो बता दे।
महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी 181।
और ए सब बात के साथ समय हो गए हैं हमार आप मन से विदा ले है के। आप मन ला ये कार्यक्रम कैसे लागत है एला हमन ला हमार इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर मा कमेंट करके बतावा। एकर साथे साथ हमार व्हाट्सएप मैसेज करके बतावा।
हमार व्हाट्सएप नंबर है 9179132444। और आज के गोठ भर देवा हमन ला इजाजत।
संज्ञा
आओ मातृका के करो स्वीकार। जय जोहार, राम राम।
और कहें
हिंसा को नो।
सृष्टि
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।